ओम शांति। 21 नवंबर 2023 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए मन मना भाव, अपने मन को बैठकर मनाओ और वो बन जाओ जो बाबा चाहते। भाव माना बन जाओ, हो जाओ मध्याजी भाव, अपने विष्णु चतुर्भुज स्वरूप को याद करो। दुनिया वाले गीता में कहते मेरे विष्णु चतुर्भुज स्वरूप को याद करो, और बाबा क्या कहते हैं, अपने विष्णु चतुर्भुज स्वरूप को याद करो कि मेरे चारों अलंकार ठीक काम करें। कमल पुष्प समान मैं पवित्र बन रहा हूं, शंख बजा रहा हूं, चक्र चलाकर अपनी बुराइयों का गला काट रहा हूं और गदा लेकर खड़ा हूं कि कोई बुराई मेरे पास ना आ सके। अलर्ट हूं कि नहीं हूं, ये चारों अलंकारों को हर वक्त हर सेकंड चेक करते रहना है। ये नहीं कि रात को चेक करना, हर सेकंड चेक करना, कोई भी सेकंड इन चारों अलंकारों के विहीन ना हो। कितने काम करवाता है हमारे से बाबा। बाप को यथार्थ पहचान कर, बाप को फिर यथार्थ पहचान कर याद करो, क्योंकि अब तक हमारे पास परमात्मा की, अपने पिता परमपिता परमात्मा की यथार्थ पहचान ही नहीं थी। याद तो तब करते, यथार्थ पहचान होती तो हम याद करते, हमें जो बताया गया हमने उसी को याद करते रहे। हमें कहा ये राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, हनुमान भगवान है, ये भी उनकी मूर्तियां हैं, इनकी मूर्तियों को याद करो, उनके जीवन को याद करते रहो जो रामायण में झूठा लिख दिया है, हम वही करते रहे। हमारा क्या, हम क्या करते, हमें जो बड़ों ने बताया, जो हमारे बुजुर्गों ने बताया, हमने तो वही करना था, हमारे सामने तो बताने वाले वही थे, और हम अंधे की औलाद अंधे बन गए। बाप को यथार्थ पहचान करो और उनको याद करो, सबको फिर यथार्थ बाप का परिचय दो, ताकि वो भी परमात्मा को याद करके अपना श्रेष्ठ भाग्य लिख सके। क्यों दे उनको, क्योंकि वो भी तो अपना भाई है ना, उनको भी अपना श्रेष्ठ भाग्य लिखने का अवसर मिले। प्रश्न, किस नशे के आधार पर तुम बाप का शो कर सकते हो, किस नशे के आधार पर तुम बाप का शो कर सकते हो, कौन सा नशा आपको रहे तो आप परमात्मा का परिचय सबको दे सकते हो, नशा अपना दिखा सकते हो। नशा हो कि हम अभी भगवान के बच्चे, वो हमें पढ़ा रहे हैं और हम ही सब मनुष्य मात्र को सच्चा रास्ता बताना, हमें ही क्या करना है, सब मनुष्य मात्र को सच्चा रास्ता बताना है। हम अभी कहाँ हैं, संगम युग पर हैं, हमें अपनी रॉयल चलन से, हमें अपनी रॉयल चलन से, क्योंकि यही पूरे कल्प में एक समय होता है जब हम अपने आप को ईश्वरीय संतान अनुभव करते हैं रियल में। बाकी तो हम सारे गाते आए, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, हमने उनको पिता तो कहा परमात्मा को, परंतु हमने कभी अपने आप को उस रॉयल रूप में अनुभव नहीं किया कि हम भगवान की संतान हैं। क्या हम भगवान का कहना मानते हैं, क्या भगवान की श्रीमत पर हम चलते हैं, परंतु उनकी श्रीमत क्या है ये भी पता नहीं था। बाप और श्री कृष्ण की महिमा सबको सुनानी है, क्या सुनाना है, बाप और श्री कृष्ण की क्या क्या महिमा है, बाप की महिमा क्या है और श्री कृष्ण की महिमा क्या है, दोनों की महिमा बतानी है। ताकि वो अपने आप फैसला कर सके कि इन दोनों में से परमात्मा कौन है। यथार्थ पहचान तो तभी आएगी ना जब झूठ और सच का राज दोनों समझाए जाए कि कृष्ण को ये कहा जाता है और परमात्मा को ये कहा जाता है, कृष्ण के गुण ये हैं, परमात्मा के गुण ये हैं। ये जब तुम सबको सुनाओगे तो वो खुद ही फैसला कर लेंगे कि यथार्थ वास्तव में परमात्मा है तो कौन है। गीत, आने वाले कल की तुम तकदीर हो, ओम शांति। ये गीत तो गाए हुए हैं फिल्मों में, स्वतंत्रता सेनानियों के। बाकी दुनिया की तकदीर किसको कहा जाता है ये भारतवासी नहीं जानते। ये भारतवासी, सारी दुनिया का प्रश्न है भाई, सारी दुनिया की तकदीर बदलेगी। नर्क से हेवन बनाने वाला कोई मनुष्य हो नहीं सकता, कोई भी मनुष्य नर्क से हेवन बनाने वाला हो नहीं सकता। ये महिमा किसी मनुष्य की नहीं है, ये महिमा किसी मनुष्य की नहीं है। अगर श्री कृष्ण के लिए कहें तो उनको गाली कोई दे ना सके। ये महिमा श्री कृष्ण के लिए कहें तो श्री कृष्ण को तो कोई गाली दे ना सके। कितनी गालियां मिली। मनुष्य ये भी नहीं जानते कि श्री कृष्ण ने चौथ का चंद्रमा कैसे देखा। वो कहते हैं कि श्री कृष्ण ने चौथ का चंद्रमा देखा और सारे वंश का क्या हुआ, नाश हुआ। उसने चौथ का चंद्रमा क्या देखा, कैसे देखा, जो कलंक लगा, जो कृष्ण को क्या लगा, कलंक लगा। कलंक वास्तव में ना श्री कृष्ण को लगते हैं ना गीता के भगवान को लगते हैं। ये गपोड़ कहानियां लिख दी हैं। और भगवान को भी कलंक लग जाए तो श्री कृष्ण भगवान है, उसको भी चौथ के चंद्रमा को देखने से कलंक लग जाए। छलनी में से बाकी सारे देखे तो कोई बात नहीं, क्या नहीं, और कृष्ण देखे तो उसको कलंक लग जाता है। तो कलंक लगते हैं। तो गीता, ना गीता के भगवान को कलंक लगते हैं और ना श्री कृष्ण को लगते हैं। ये गपोड़े हैं, क्या नहीं, और जो मर्जी आती है लिख दिया उन्होंने। सोचने वाली बात है ना कि भगवान को भी कोई कलंक लगा दे फिर वो भगवान कैसे हुआ। मुझे याद आ रहा है चंद्रमा पर पाकिस्तान वालों ने कहा कि हम तो अपने झंडे में से चंद्रमा ही हटा देते हैं, भारत तो चंद्रमा के ऊपर पहुंच गया, ठीक है ना। अब उन बिचारों का कोई कसूर नहीं, क्योंकि वो चंद्रमा को समझते हैं कि वो भी देवता है, वो भी मतलब भगवान के रहने का स्थान है, मतलब इसलिए उसको इतना श्रेष्ठ माना। और उनको बड़ा गुस्सा आया कि वो जो है ना वहां पहुंच गया। हम भी तो चंद्रमा को देवता मानते, अब देवता के ऊपर जाके पता लगा कि वो तो कुछ है ही नहीं, वो तो चट्टानों का ढेर है, बर्फ का ठंडा गोला है, 14 दिन में दिन होता है, कहीं कैसे दिन होता है, कहीं रात होती है, मतलब जो भी है वो एक पिंड है, वहां कोई जीवन भी नहीं, कुछ भी नहीं अभी फिलहाल। तो मतलब कहने का ये है कि उसको कहना कि भी वो उसको अर्क देने का क्या मतलब हुआ, सूरज को अर्क देने का क्या मतलब हुआ, वो किस बात की गवाही देंगे, किसको जाकर लिखवाएंगे।
सूर्य को तो जो है सूर्य देव समझ के सुबह,
हाँ पानी चढ़ाते लोग बात
देती है, जल चढ़ाते
वही वही ना, वही बाबा कह रहे हैं ना कि सूर्य, अब मतलब ये बात समझने वाली बात है कि दुनिया बिचारी जैसा उनको बहकाया गया वो बहके रहे, उसी में चलते रहे। कलंक लगते हैं तो ब्रह्मा को लगते हैं। सारे कलंक किसको लगते हैं, ब्रह्मा को, क्योंकि वो ऐसे समय पर आता है जहां वो आकर के उनको बदलना चाहता है कि भाई तू इनको पवित्र रहने क्यों देना चाहता है। कहते जी मैंने तो नहीं कहा, मैं तो खुद शादी की, मेरे बच्चे वो है जो मेरे अंदर आता है वो आकर कहता है पवित्र रहो, ठीक है ना। मतलब इस प्रकार के जो भी दोष लगाए वो ब्रह्मा बाबा पर लगाए गए। कोर्ट में केस भी चला तो ब्रह्मा बाबा पर चला, परंतु डेट तो प्रधान को देने जानी थी, मम्मा को जाना था कोर्ट में। श्री कृष्ण को कलंक लगाए भी हैं तो भगाने के लिए, कि गोपियों को भगाया, वो क्या बोलते हैं 16,108 रानियों को भगा के ले आया। शिव बाबा का तो किसी को भी पता नहीं, वो सबको भगाता है, परंतु वो शिव बाबा को ही नहीं जानते, उस पर क्या कलंक लगाएंगे। अब कृष्ण ने भगाया, झूठा दिखाया है, दोष लगाया कि उसने जो है ना ये दोष लगा उसके ऊपर कि उसने गोपियों को भगाया। अच्छा, गोपियों को भगा के क्या किया, क्या किया उनको, पटरानी बनाया ना, परंतु वो जानते नहीं। ईश्वर के पिछाड़ी भागे, सारी दुनिया भागी, सारी आत्माएं भागेंगी घर जाने के लिए, ईश्वर के पिछाड़ी जरूर, परंतु ईश्वर तो गाली खा ना सके, दे दो गालियां, वो पक चुके उसके कान सुन सुन के, खूब गालियां दी दुनिया ने, सब ने गालियां दी, तो कोई हाँ दे दे, ना ईश्वर को ना श्री कृष्ण को गाली दे सकते, दोनों की महिमा जबरदस्त है, दोनों की महिमा बाबा क्या करे जबरदस्त है। वो भी मेरे समान पूरा संपूर्ण पवित्र बनता है जब उसका नाम श्री कृष्ण रखा जाता है, जब वो संपूर्ण पवित्र है, संपूर्ण निर्विकारी है, फिर उसका क्या दोष है, उसको क्यों गालियां दे रहे हो भाई। ब्रह्मा तो पतित है, इसने किसी को कुछ दिया होगा, गालियां दी होंगी तो उन्होंने गालियां निकाल दी, उन्होंने तो हिसाब किताब बराबर करना है ना, देहधारी को तो अपना हिसाब बनाना भी है और उसको बराबर भी करना है। मैं किसी को दुख दे दूंगा तो मुझे दुख लेना पड़ेगा, तो दोनों की तो महिमा ही जबरदस्त है। 100% 16 आने सच्चा, बताओ वो किसी को दुख देने का संकल्प भी नहीं कर सकता, वो किसी को दुख देता नहीं तो कोई उसको क्यों गाली देगा, क्यों बद्दुआ देगा। गाली देना माना बद्दुआ देना, महिमा जबरदस्त है। श्री कृष्ण की भी महिमा नंबर 1 है, लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा नहीं है, क्योंकि वे शादीशुदा है। समझ में आया, कृष्ण की महिमा नंबर 1 है, लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा नहीं है। आते ही पहले दिन शादी करता है, लक्ष्मीनारायण बनते ही सत्युग में आते ही पहले दिन क्या होती है, शादी होती है, राज सिंहासन पर बैठते हैं। पहले दिन ना होती हो तो जितना जल्दी हो सकता होगा वो होता होगा, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से, क्योंकि वे शादीशुदा है, श्री कृष्ण तो कुमार है, इसलिए उसकी महिमा ज्यादा है। बल लक्ष्मी नारायण की महिमा भी ऐसे ही गाएंगे, 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी। श्री कृष्ण को तो फिर द्वापर में दिखा दिया, उन्होंने उठाकर श्री कृष्ण को कहां दिखा दिया, द्वापर में। समझते हैं ये महिमा परंपरा से चली आई है, इन बातों को भी तुम जानते हो, ये तो ईश्वरीय नॉलेज है। ईश्वर ने ही राम राज्य स्थापन किया, ईश्वर ने क्या किया, राम राज्य स्थापन किया। राम राज्य को मनुष्य समझते नहीं, राम राज्य को मनुष्य समझते ही नहीं, बाप ही आकर इन सब को समझ देते हैं, बाप ही आकर इन सब की समझ देते हैं। सारा मदार गीता पर है, गीता में ही रॉन्ग लिख दिया है। कौरवों और पांडवों की लड़ाई तो लगी ही नहीं, कौरवों और पांडवों की लड़ाई लगी ही नहीं, बताओ अर्जुन की बात ही नहीं है, कोई महाभारत हुई नहीं है, कोई कौरव पांडव आपस में लड़े ही नहीं, ऐसा कोई युद्ध हुआ ही नहीं, अर्जुन की कोई बात ही नहीं कहीं भी। ये तो बाप बैठ पाठशाला में पढ़ाते हैं, यहां हम पांडव हैं, दुनिया वाले जो परमात्मा को नहीं जानते वो कौरव हैं, क्या हमारी उनके साथ कोई लड़ाई है, कोई लड़ाई नहीं। और यहाँ कोई अर्जुन है जो रथ पे बैठा हो, जो ज्ञान को ओटे सो अर्जुन, ठीक है। पाठशाला युद्ध के मैदान में थोड़ी ही होती है, उन्होंने दिखाया कि युद्ध के मैदान में कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान सुनाता है। अब यदि गीता का ज्ञान सुनाना है तो वो युद्ध के मैदान में सुनाया जाएगा क्या? गीता पाठशाला में बैठ के सुनाया जाएगा ताकि वो समझ सके, मनन चिंतन कर सके, अपने जीवन में धारणा कर सके। हाँ, ये माया रावण से युद्ध है, ठीक है ना? रावण जो है ही नहीं, रावण जो है ही नहीं, रावण रुलाने वाला कोई है ही नहीं, वो हर एक के अंदर बैठा हुआ है अंधेरा, रावण का माया का अंधेरा वो सबके अंदर है, अज्ञानता का अंधेरा। तो किसी ने हमें रोशनी दी नहीं, खुद अंधेरे में थे तो बच्चों को भी अंधेरे में ही रख दिया। उन पर जीत पानी है, माया जीते जगत जीत बनना है, माया जीते जगत जीत, मन जीते नहीं। परंतु इन बातों को जरा भी समझ नहीं सकते। ड्रामा में नूंद ही ऐसी है, ड्रामा में नूंद ही ऐसी है, उन्होंने पिछाड़ी में आकर समझना है और तुम बच्चे ही समझा सकते हो। उनको लास्ट में आके समझना है और तुम ही उनको क्या कर सकते हो, समझा सकते हो। भीष्म पितामह आदि को हिंसक बाण आदि मारने की बात ही नहीं है, हिंसक बाण आदि मारने की बात ही नहीं है। शास्त्र
किसी पॉइंट पर हो रहा है और इसी पर विरोध होता है। महाभारत हर जगह दिखाया है और लोग मानते हैं, कृष्ण की लीला दिखाते हैं, वो है सारी चीजें हैं, लेकिन बाबा कहता है उन्हें तो लंका में रावण था, उन्हें महाभारत हुआ,
बिल्कुल
अर्जुन ने बाण चलाया,
बिल्कुल
ये सारी चीजें प्रैक्टिकल में किसी से भी पूछो ग्राउंड पे सब नकारेंगे,
नकारेंगे। मैं भी नकारता, मैं कौन सा उनमें अलग था या आप तो उनसे अलग हो। ये तो जिसको समझ में आएगा, जिसने सत्युग का देवी देवता बनना होगा उसको ये समझ में आएगा। भाई जी, कुरुक्षेत्र का नाम कब लिखा गया? कुरुक्षेत्र का भारत के नाम, भारत में नाम कब आया? जब हरियाणा बन गया, हरियाणा बनने के बाद कोई कुरुक्षेत्र का नाम नहीं था, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बनी और कुरुक्षेत्र का नाम रखा। ये अब रखा गया, आप किसी से पूछ के देखो कब रखा गया। हरियाणा जब आजाद हुआ, पंजाब और हरियाणा अलग हुए, तब तक कहीं कुरुक्षेत्र नहीं था, तब तक कहीं कोई कुरुक्षेत्र नहीं था। गुड़गांव के अंदर, इस जहां हम बैठे हैं, इस गुरुग्राम के अंदर द्रोणाचार्य का कोई मंदिर नहीं था। और यहाँ पर विदेशी आए, उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में द्रोणाचार्य ने पांडवों को ज्ञान सुनाया था, उनकी जगह कौन सी थी? यहाँ कोई मंदिर ही नहीं था जो दिखाते। और उसके बाद
मंदिर ही तो बताते हैं
ये, भाई नहीं, ये शीतला माता का मंदिर गुरुद्रोण का मंदिर नहीं है। गुरुद्रोण का मंदिर उस समय एक यहाँ वो हुआ करते थे पार्षद, और उसने फिर बनवाया था द्रोणाचार्य कॉलेज के पास, तो बना हुआ है मंदिर, ठीक है नहीं, द्रोणाचार्य का मंदिर। और फिर ये भाई मेरे अभी तो खुला द्रोणाचार्य, ये उसके बाद ही तो बना गुरुद्रोण, वो मंदिर बना और द्रोणाचार्य। हाँ जी, अरे भाई ये इस जगह को अभी तो बनाया। जब ये प्रश्न खड़ा हुआ कि गुरुग्राम में द्रोणाचार्य रहते थे, वो जगह कौन सी थी, कहाँ रहते थे, तो जहाँ मंदिर बना दिया उसको बना दिया कि ये जगह थी, यहाँ गुरु द्रोणाचार्य जो है ना, ये अब बनाया ना गुरु द्रोणाचार्य कॉलेज। और उसके बाद जो राजीव चौक है वहाँ पर, हाँ जी,
गुरुग्राम नाम तो इसने भाई चेंज कर दिया, नरेंद्र मोदी बना दिया, अहमदाबाद का स्टेडियम था वो नरेंद्र मोदी बना दिया,
वो तो बनवाए हैं।
ये तो बढ़ते रहते हैं, जो भी बना,
जो प्रधानमंत्री आते हैं अपने उनके चलते हैं नाम। मतलब हमें सच समझने वाली बात है कि कुरुक्षेत्र इस धरती पर कोई था ही नहीं।
भाई ये रोक काट दिया
भाई, महाभारत मैंने थोड़ा गलत की, आपके बाप ने की है,
युद्ध हुआ है और आप सुनाते हो, खूब सुनाते हो उसकी हिस्ट्री।
किसकी?
जिसकी कुरुक्षेत्र की।
नहीं, मैं तो नहीं सुनाता हूँ, जब सुनाते थे जब पंडित थे, आप ब्राह्मण बने हैं तो आप तो नहीं सुना सकते ना वो गपोर का। शास्त्रों में तो बहुत ही बातें लिख दी हैं, माताओं को उनके पास जाकर टाइम लेना चाहिए। बोलो, हम आपसे इस संबंध में बात करना चाहते हैं। ये गीता का भगवान ने गाई है, भगवान की महिमा है, श्री कृष्ण तो अलग है। हमको तो इस बात में संशय आता है। रुद्र भगवानोवाच, उनका ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, ये निराकार परम पिता परम आत्मा का ज्ञान है, ज्ञान यज्ञ है। मनुष्य फिर कहते हैं श्री कृष्ण भगवानोवाच। मनुष्य क्या कहते हैं? श्री कृष्ण भगवानोवाच। भगवान तो वास्तव में एक को ही कहते हैं, भगवान तो वास्तव में एक को ही कहते हैं। उनकी फिर महिमा लिखनी चाहिए। श्री कृष्ण की महिमा ये है। आप दोनों में गीता का भगवान कौन है? दोनों की महिमा लिख के बताओ कि ज्ञान का सागर, कृष्ण को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे, सर्वगुण संपन्न कहेंगे, कहें तो प्रेम का सागर, शांति का सागर, अजन्मा अयोनी सर्वज्ञ। कृष्ण को सर्वज्ञ नहीं कह सकते। हाँ, तो गीता का भगवान कौन? और वो कृष्ण को सर्वव्यापी कहते हैं, कह के दिखाओ कैसे सर्वव्यापी हो सकता है? शरीर के साथ है, सब जगह कैसे जा सकता है? एक टाइम में एक जगह होगा, आत्मा फिर भी सब जगह स्पीड, परमात्मा की गति कितनी फास्ट है कि वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जब चाहे जहां चाहे पहुंच सकता है। कृष्ण पहुंच नहीं सकता, क्योंकि शरीर के साथ तो जाने के लिए साधन चाहिए। अब गोपोड़ा महाराज जी वो 16108 रानियों के साथ हर वक्त रहता था, बुद्धू बना दो फिर 16108 ही कृष्ण होंगे, एक नहीं हो सकता। परमात्मा कहते बच्चे परम धाम कोई ऊपर एक कुर्सी नहीं रखी हुई, परम धाम परम अवस्था है। मैं यहाँ आने के बाद भी परम अवस्था में होता हूँ। ये परम मतलब बाबा कहते मुझे परम धाम में याद करो तो परम अवस्था है। परमात्मा कहते परम अवस्था का मतलब जहाँ संकल्प नहीं। और परमात्मा कहते बच्चे मुझे अगले सेकंड क्या बोलना है मैं सोचता नहीं, तुम्हें सोचना पड़ता है। मैं ड्रामा में मेरे पास नूंद है, मैंने जो बोलना है वो मैंने बोलना है। ये तीनों अवस्थाएं हैं। सूक्ष्म भी अवस्था है, सूक्ष्म वतन कोई है नहीं धर ऊपर कि ये जगह जो है ना सूक्ष्म वतन की है, वहां पहुंच जाओ तो आप सूक्ष्म वतन में चले जाएंगे। तो फिर मोदी जो है ना अपना सीधा तो भोग लगाने के लिए बाबा ने कब कहा? भाई बाबा ने कहा मेरे भाई गीता में लिखा हुआ है सहज राज योग। बाप कहते हैं कि बेहद का संन्यास करो, बेहद का संन्यास करो, देह सहित देह के सर्व संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो, मन मना भाव मध्याजी भाव। बाप समझाते तो बहुत अच्छा है, बाबा कहते मैं समझाता तो बहुत अच्छा हूँ, समझाते तो बहुत अच्छी रीति से हैं। को आत्मा को समझो, मन मना भाव मध्याजी भाव। बाप समझाते तो बहुत अच्छी रीति से हैं। गीता में है श्री मत भगवान वाच। श्री अर्थात श्रेष्ठ श्रेष्ठ परम पिता परम आत्मा। शिव को ही कहेंगे श्री कृष्ण तो देवी गुण वाला मनुष्य है, गीता का भगवान तो शिव है, जिसने राज योग सिखाया बरोबर पिछाड़ी में सब धर्म विनाश हो एक धर्म की स्थापना हुई है। सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वे श्री कृष्ण ने नहीं परंतु भगवान ने स्थापन किया। उनकी महिमा ये है, उनको त्वमेव माता से पिता त्वमेव कहा जाता है। श्री कृष्ण को तो नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण को तो नहीं कहेंगे, तुम्हें सत्य बाप का परिचय देना है। तुम समझा सकते हो कि भगवान ही लिबरेटर और गाइड है, भगवान ही लिबरेटर और गाइड है जो सबको ले जाते हैं। मच्छरों सदृश सबको ले जाना ये तो शिव का काम है, ये तो शिव का काम है। सुप्रीम अक्षर भी बड़ा अच्छा है। तो शिव परम पिता परम आत्मा की महिमा अलग, श्री कृष्ण की महिमा अलग, दोनों सिद्ध कर समझानी है। शिव को तो शिव तो जन्म मरण में आने वाला नहीं है, जन्म मरण में आने वाला नहीं है, वे पतित पावन है। श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। आप परमात्मा किसको कहा जाए, एक एक बात उनको बताई जाए फिर उनको समझाया जाए। ये भी लिखना चाहिए, बेअज के बाप को ना जानने के कारण ही आर्फन अनाथ दुखी हुए हैं। सतयुग में जब धनके बन जाते हैं तो जरूर सुखी होंगे, जरूर सुखी होंगे। ऐसे स्पष्ट अक्षर होने चाहिए, ऐसे स्पष्ट अक्षर होने चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षा लो, मुझे याद करो और वर्षा लो। सेकंड में जीवन मुक्ति, अभी भी शिव बाबा ऐसे कहते हैं। महिमा पूरी लिखनी चाहिए, शिवाय नमः, उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। इस सृष्टि चक्र को समझने से तुम स्वर्गवासी बन जाएंगे। अब जज करो राइट क्या है। तुम बच्चों को भी सन्यासियों के आश्रम में जाकर पर्सनल, मंदिरों में माताओं को भेजा और सन्यासियों के आश्रम में बच्चों को जाकर मिलना चाहिए। सभा में तो उनको बहुत घमंड होता है, वे भीड़ में उनको को तो उनकी बेइज्जती होती है ना, उनसे बात नहीं करो। तुम बच्चों की बुद्धि में ये भी रहना चाहिए कि मनुष्यों के को सच्चा रास्ता कैसे बताएं। भगवानोवाच, मैं इन साधुओं आदि का भी उद्धार करता हूँ, लिबरेटर अक्षर भी है। बेहद का बाप ही कहते हैं मेरे बनो, फादर शोज सन, फिर सन शोज फादर। श्री कृष्ण को तो फादर नहीं कहेंगे, गॉड फादर के सब बच्चे हो सकते हैं, मनुष्य मात्र के तो सब बच्चे हो न सके। तो तुम बच्चों को समझाने का बड़ा नशा होना चाहिए। बेहद के बाप के हम बच्चे हैं, राजा के बच्चे, राजकुमार तुम चलन तो देखो। तुम बेहद के बाप के बच्चे राजकुमार हो, चलन तो देखो, तुम्हारी चलन कैसी है, कितनी रॉयल होती है। परंतु उस बेचारे श्री कृष्ण पर तो भारतवासियों ने क्या लगाया, कलंक लगा दिया। कहेंगे भारतवासी तो तुम भी हो, भारतवासी तो तुम भी हो, बोलो हाँ हम भी हैं, परंतु हम अभी संगम पर। वो कहेंगे आपको ना, भारतवासी तो तुम भी हो, कहो हाँ हम भारतवासी हैं, परंतु तुम कलयुग में हो, हम संगम पर। और उनसे पढ़ रहे हैं, भगवानों वाच, तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। श्री कृष्ण की बात ही नहीं, बात हो नहीं सकती। आगे चलकर समझते जाएंगे, राजा जनक ने भी इशारे से समझाना, राजा जनक ने भी इशारे से समझा है ना। परमपिता परमात्मा को याद किया और ध्यान में चला गया। ध्यान में तो बहुत जाते रहते हैं, ध्यान में निराकारी दुनिया और वैकुंठ देखेंगे, यहां तो हम इस निराकारी दुनिया में रहने वाले, इस निराकारी दुनिया में रहने वाले हैं, परम धाम से यहां आकर पाठ बजाते हैं, विनाश भी सामने खड़ा है, साइंस वाले मून के ऊपर जाने के लिए माथा मारते हैं। पहुंच गए, यह है अति साइंस के घमंड में जाना, जिससे फिर अपना ही विनाश करते हैं। बाकी मून आदि में कुछ है नहीं, मून आदि में कुछ है नहीं। बातें तो बड़ी अच्छी हैं, सिर्फ समझाने की युक्ति चाहिए। हमको शिक्षा देने वाला ऊंचते ऊंच बाप है, वे तुम्हारा भी बाप है, उनकी महिमा अलग, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। रुद्र अविनाशी ज्ञान यज्ञ है, जिसमें सब आहुति पढ़नी है। पॉइंट्स बहुत अच्छी हैं, परंतु शायद अभी देरी है, इसलिए समझ में बच्चों को नहीं आ रही है। ये पॉइंट भी अच्छी है, एक है रूहानी यात्रा, दूसरी है जिस्मानी यात्रा। इस पॉइंट पर भी चर्चा करो। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो अंत मति सो गति हो जाएगी, स्पिरिचुअल फादर के बिना और कोई ये सिखला ना सके। मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन कोई मनुष्य नहीं सिखला सकता, कोई मनुष्य सिवाय परम पिता परम आत्मा के। कोई भी टीचर कहे, ब्रह्मा कुमारी कहे कि हम सिखा सकते हैं, ये उनकी भूल है। राजयोग मेडिटेशन कोई भी इंसान नहीं सिखा सकता, जब तक उसने परमात्मा को नहीं जाना, स्वयं को आत्मा नहीं समझा, और जब तक परमात्म ज्ञान को नहीं लिया, तब तक वो राजयोग कर ही नहीं सकता, कर्म इंद्रियों का राजा बन ही नहीं सकता। ऐसी ऐसी पॉइंट्स लिखनी चाहिए, मन मना भाव तो मध्याजी भाव, ये है मुक्ति, जीवन मुक्ति की यात्रा, ये है मुक्ति, जीवन मुक्ति की यात्रा। मन मना भाव है मुक्ति की यात्रा, और मध्याजी भाव है जीवन मुक्ति की यात्रा। क्योंकि चारों अलंकार जो ध्यान देगा, चारों अलंकारों पर अटेंशन देगा, पूरी धारणा करेगा, वही सतयुग में जाएगा, वही स्वर्ग में जाएगा, वही विष्णुपुरी में जाएगा। और मन मना भाव करना है, अपने आप को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना, ये सब चले जाएंगे, सब अंत में अपने आप को आत्मा समझेंगे और सब परम धाम जाएंगे। यात्रा तो बाप ही कराएंगे, श्री कृष्ण तो करा ना सके, याद करने की ही आदत डालनी है। जितना याद करेंगे उतना खुशी होगी, परंतु माया याद करने नहीं देती। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बच्चों बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। परंतु बाबा कुछ और बोल रहा है भाई। सर्विस तो सब करते हैं, परंतु ऊंच और नीच सर्विस तो है ना। किसको बाप का परिचय देना है बहुत सहज, किसी को भी बाप का परिचय देना बहुत सहज है। तब बाबा कहते हैं अच्छा, रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। बीच में लाइन याद आ गई बाबा को, तो बाबा ने इसलिए ऐसा कहा। रात्रि क्लास, जैसे पहाड़ों पर हवा खाने रिफ्रेश होने जाते हैं, घर या ऑफिस में रहने से बुद्धि में काम रहता है, बाहर जाने से ऑफिस के ख्याल से फ्री हो जाते हैं। यहाँ भी बच्चे रिफ्रेश होने के लिए आते हैं, आधा कल्प भक्ति करते करते थक गए हैं, आधा कल्प भक्ति करते करते थक गए हैं। पुरुषोत्तम संगम युग पर ज्ञान मिलता है, ज्ञान और योग से तुम रिफ्रेश हो जाते, ज्ञान और योग से तुम क्या हो जाते हो, रिफ्रेश हो जाते हो। तुम जानते हो अभी पुरानी दुनिया विनाश होती है, नई दुनिया स्थापन होती है। परले तो होती नहीं, परले तो होती नहीं। वे लोग समझते हैं दुनिया एकदम खत्म हो जाती है, परंतु नहीं, परंतु नहीं, चेंज होती है। ये है ही नर्क, पुरानी दुनिया। नई और पुरानी दुनिया क्या होती है, नई और पुरानी दुनिया क्या होती है, ये भी तुम जानते हो। तुमको डिटेल में समझाया गया है, तुम्हारी बुद्धि में विस्तार है। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, समझाने में भी बहुत रिफाइननेस चाहिए। समझाने में भी क्या चाहिए, बहुत रिफाइननेस चाहिए। किसी को ऐसे समझाओ जो झट बुद्धि में बैठ जाए। कोई बच्चे कच्चे हैं, कोई बच्चे क्या हैं,
कच्चे
हैं, जो चलते चलते टूट पड़ते हैं। भगवानों वाच भी है, आश्चर्यवत सुनंती कथंती और फिर भगंती हो जाते हैं। यहाँ है माया से युद्ध, माया से मरकर ईश्वर का बनते हैं, फिर ईश्वर से मरकर माया का बनते हैं, फिर ईश्वर से मरकर माया का बनते हैं। एडॉप्ट हो माया के बन जाते हैं, एडॉप्ट हो फिर फारकती दे देते, बाबा की गोद में आ जाते हैं, फिर बाबा को क्या करते हैं, फारकती दे देते हैं। माया बड़ी प्रबल है, बहुतों को तूफान में लाती है। बच्चे भी समझते हैं हार जीत होती है, ये खेल ही है हार जीत का, हार और जीत का। पांच विकारों से हारे हैं, अभी तुम जीतने का पुरुषार्थ करते हो। आखरीन जीत किसकी होगी, तुम्हारी है। जब बात के बने हो तो पक्का बनना चाहिए। तुम देखते हो माया कितना टेम्पटेशन माना लालच देती है। कई बार ध्यान दीदार में जाने से भी खेल खलास हो जाता है। बस ध्यान में गए, बस खेल खत्म। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अब 84 जन्म का चक्र लगाकर पूरा किया है। देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने हैं, अब भी शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, ब्राह्मण फिर देवता बन जाते हैं, ये भूलना नहीं है। अगर ये भी भूलते हो तो पांव पीछे हट जाते हैं, फिर दुनियावी बातों में बुद्धि लग जाती है। मुरली आदि भी याद नहीं रहती, याद की यात्रा भी डिफिकल्ट भासती है, ये भी वंडर है। कई बच्चों को बैज लगाने में भी लज्जा आती है, ये भी देह अभिमान है, देह अभिमान है ना। गाली तो खानी ही है, गालियां तो श्री कृष्ण ने कितनी गालियां खाई, सबसे जास्ती गाली खाई है शिव ने। और अभी बाबा क्या कहते हैं, शिव को कोई गाली नहीं दे सकते, कृष्ण को कोई गाली नहीं दे सकते। और उसी मुरली के अंदर बाबा क्या कह रहे हैं, ब्रह्मा को गाली मिलती है, शिव को तो कोई गाली दे नहीं सकता, कृष्ण को कोई गाली दे नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि कृष्ण को और शिव को वो जानते नहीं। जान जाए तो गाली दे नहीं सकते ना, यथार्थ रीति पहचान तो हम कराएंगे ना। ना पहचान होने के कारण जितने भी दोष लगाए वो यथार्थ ना जानने के कारण। फिर सबसे जास्ती गाली खाई है राम ने, सबसे जास्ती गाली किसने खाई है, राम ने। नंबर वार है, डिफेम करने से भारत की कितनी गलानी हुई है। तुम बच्चों को इसमें डरना नहीं है। अच्छा मीठी मीठी सिक्की लधे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर एक, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। बुद्धि से क्या करना है? बेहद का संन्यास कर रूहानी यात्रा पर तत्पर रहना है, याद में रहने की आदत डालनी है। फादर शोज सन, सन शोज फादर। सभी को बात का सत्य परिचय देना है, सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। वरदान, मनसा और वाचा, मनसा और वाचा के मेल द्वारा जादू मंत्र करने वाले नवीनता और विशेषता संपन्न भव, मतलब आपके नवीनता भी हो और विशेषताओं से भरा हो। मनसा और वाचा के मेल, मतलब दोनों मिला करके जादू करने वाले। सेवा में मनसा भी सेवा करो, वाचा भी सेवा करो, तब वो जादू मंत्र करेगा, तब विशेषता संपन्न बनो। तो मनसा और वाचा दोनों का मिलन जादू मंत्र का काम करता है। इससे संगठन की छोटी मोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाएंगी जो आप सोचेंगी कि ये तो जादू ही हो गया। मनसा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने में बिजी हो तो मन की हलचल समाप्त हो जाएगी। पुरुषार्थ से कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे, संगठन में कभी घबराएंगे नहीं। मनसा वाचा की सम्मिलित सेवा से विहंग मार्ग की सेवा का प्रभाव देखेंगे। अब सेवा में इस नवीनता और विशेषता, इस नवीनता और विशेषता से संपन्न बनो तो 900,000 प्रजा सहज तैयार हो जाएगी, सहज तैयार हो जाएगी। स्लोगन है, बुद्धि यथार्थ निर्णय तब देगी जब पूरा पूरा वॉइसलेस बनेंगे, निर्विकारी बनेंगे, कोई भी विकार आप में नहीं हो। वाइस माना पाप, वाइस माना विकार। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य हैं, कलयुग असार संसार से सतयुगी सार वाली दुनिया में ले चलना किसका काम है। इस कलयुगी संसार को असार संसार क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में कोई सार नहीं, माना कोई भी वस्तु में वो ताकत नहीं रही, अर्थात सुख शांति पवित्रता नहीं है जो इस सृष्टि पर कोई समय सुख शांति पवित्रता थी, पवित्रता थी ना। अब वो ताकत नहीं है क्योंकि इस सृष्टि में 5 भूतों की प्रवेशता है, इसलिए ही इस सृष्टि का सागर, सॉरी इस सृष्टि को भय का सागर, चारों तरफ सारी दुनिया भय में जी रही है, अथवा कर्म बंधन का सागर कहते। इसलिए ही मनुष्य दुखी हो परमात्मा को पुकार रहे हैं, परमात्मा हमको भव सागर से पार करो। इससे सिद्ध है कि जरूर कोई अभय अर्थात निर्भयता का भी संसार है जिसमें चलना चाहते हैं। इसलिए इस संसार के मुख्य, इस संसार को पाप का सागर कहते हैं जिससे पार कर पुण्य आत्मा वाली दुनिया में चलना चाहते हैं। तो दुनियाएं दो है, एक है सतयुगी सार वाली दुनिया, दूसरी है कलयुगी असार वाली दुनिया। दोनों दुनियाएं इस सृष्टि पर होती हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9213106986 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।